हर खूबसूरत सूरत के एंड पे जब दिल उदास होता है तो साथ ही अल्लाह उसको खुश कर देते हैं। कैसे? एक और नई सूरत लाकर। तो पहली सूरतों की तरह देखेंगे पहले सूरत अल अराफ के मजामीन का तज्जिया, फिर इसकी आयतों का तज्जिया, ताकि हमें एक बिग सिनेरियो में एक बिग पिक्चर, जिसको आप जूम इन और जूम आउट कह सकते हैं, हमें एक ओवरव्यू भी दिख जाए और क्लोज सर्कट भी दिखे। आपको लॉन्ग टर्म इस सूरत का हदफ और इसका गोल और मैसेज भी समझ आ जाए और इसका शॉर्ट टर्म भी समझ आ जाए। तो पहली 10 आयतें सूरत मुबारका के मजामीन का इशारिया हैं, जैसे किसी भी बुक के शुरू में इंडेक्स पेपर होता है, इंडेक्स होता है। फिर 11 से 35 में अजल का बयान है और 36 से 58 में अबद का बयान है। सच बताइए, कितनी दफ़ा सूरत अल-अराफ़ पढ़ी? कभी आपने गौर किया इन चीज़ों पर? अजली क्या है और अबदी क्या है, अभी आप देख लेंगे। अजल अबद का नाम तो हमें पता है, अजल शुरू से और अबद आखिर तक। फिर इसी तरह 59 से 141 तक कह लीजिए, जो कि पूरी हमें 6 कौमों की दास्तानें मिलती हैं। वो कौमें जिन्होंने नबियों की नाकदरी की और अपनी गुस्ताखियाँ अपने नबियों के साथ इस तरह रवा रखी कि अल्लाह ने उनको खसो खाशाक की तरह तबाह कर दिया। फिर इसी तरह 142 से 174 में तारीख़ बनी इसराइल के अहम वाक़ियात हैं। सूरत बकरा के बाद जहाँ दोबारा आपको कदरे तफसील से बनी इसराइल के वाक़ियात मिलते हैं। फिर 172 से 179 में अजल, अबद और दरमियानी अरसे के वाक़ियात, यानी दुनिया का माजी, दुनिया का मुस्तकबिल और आज, माजी हाल और मुस्तकबिल के वाक़ियात हैं। फिर 180 से 206 इबरत और मौइज़त। क्या पता चला? ये सूरत अपने अंदर बहुत कुछ लेती है। तो आइए ज़रा इसकी आयतों को अब क्लोज सर्कट में टॉपिक वाइज हल्का हल्का समझते हैं। पहली चीज़, आयत 1 से 10 सूरत मुबारका के मजामीन का इशारिया है, यानी अल्लाह ताला अपने नबी को हरूफ मुकद्दात के बाद जो बात कहते हैं वो क्या? किताब उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरी का हरज मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही वज़िक्रा लिल्मुमिनीन। ये वो किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की, बस अपने दिल में इससे तंगी महसूस ना कीजिए कि इसके ज़रिए लोगों को डराएं, और ये तो नसीहत है ईमान वालों के लिए। तो ये कुरान हरज नहीं, कांटा नहीं, बोझ नहीं है। नहीं दिल करता मत सुनिए, लेकिन इसको बोझ ना समझिए, क्योंकि ये किताब तो हकीकत में इंसान की आंखें खोल देती है। तो करना क्या? इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, पैरवी कीजिए जो अल्लाह ने उतारा। लोगों की बातों पे मत आइए। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, लोगों के कल्चर, लोगों के तरीके, लोगों के फैशन, उनके मॉडल्स को रिजेक्ट कीजिए और अल्लाह के दिए हुए लाइफ स्टाइल को कबूल कीजिए। लेकिन कलीलम्मा तज़क्करून, थोड़े हैं और थोड़ी है जो तुम नसीहत लेते हो या लोग लेते हैं। और इसी में फिर पिछली कौमों की तबाही का जिक्र है। यकीन करें, ये पहला रुकू सिर्फ आप सुन लें, बल्कि इसमें एक आयत जो आ रही है, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इस पर एक दावा सीढ़ी बनी थी, किसके पलड़े भारी। अगर कोई एडमिन सुन रहा है तो वो इसको अपलोड कर दीजिए इसी पेज पे, कि कैसे किन कामों से इंसान के पलड़े भारी होते हैं। फिर आयत 11 से 25 में किस्सा आदम और इबलीस है, पीछे भी आया, अब यहाँ दोबारा कदरे तफसील से है। आयत 26 से 28 में लिबास में तकवा इख्तियार करो, पहली दफ़ा यहाँ बात हो रही है, इंशाल्लाह हिदायत में इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी आज। फिर आयत 29 से 30, अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है, यानी वी हैव अ बैलेंस्ड रिलीजन, दीन के नाम पे एक्सट्रीमिज्म का शिकार ना हो जाओ। आयत 31 से 32, हलाल अशिया को हराम समझ लेना जुहद नहीं है। बस लोग तकवा का खुद साख्ता मेयार करके अल्लाह की जायज़ करार दी गई चीज़ों को भी अपने ऊपर नाजायज़ करते हैं, फिर एक बोरिंग सा दीन पेश करते हैं, बोझल। और लोग तो कहते हैं बाजी बड़ी नेक है और अंकल जी बड़े नेक हैं, लेकिन हम इतने नेक हो नहीं सकते। वो छुट्टी ले लेते हैं और आप अकेले के अकेले अपने दीन को लेकर दूसरों में नुमाया होते हैं। हमारा दीन ऐसा नहीं है। आप देखिए, रूम टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है, बहुत सर्दी होगी तो ठिठरेंगे, बहुत गर्मी होगी तो पसीने आएंगे। तो दीन के नाम पे ना तो बहुत ठंडे हों कि फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नतों और मामलात और अखलाकियात और अकायद को बिल्कुल ही पीछे डाल दें, और दूसरी तरफ यह कि इतने एक्सट्रीम पे चले जाएं कि लोग कहें कि आप नाकाबिले तस्खीर हैं। अल्लाह के नबी को फॉलो कर लीजिए, आप बैलेंस दीन पे आएंगे। आप खाते भी थे, रोज़े भी रखते थे, शादियाँ भी कीं और आप सोते भी थे, और इसी तरह की आपकी ज़िंदगी सुन्नतों में रंग जाएगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ रहने वाले देखेंगे कि ये कोई ऐसा तर्ज ज़िंदगी तो नहीं है जो हम नहीं अडॉप्ट कर सकते। और ऐसा दीन लोगों को दिखाइए जिसमें एक्सट्रीम ना हो। हम जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो कुछ तो फिर निकल जाते हैं दीन से ही, कि तोबा तोबा, हमसे ये नहीं होता। और कुछ पे थोड़े से जो आगे आते हैं फिर वो अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं और फिर बहुत सारी और खराबियां आने लगती हैं। I-33 है, बेहयाई हराम है, ख्वाह जाहिर हो या पोशीदा, यानी कोई खुले कमरों में, खुली जगहों पे, पार्टीज में, शादियों में, नाइट क्लबों में जाकर बुरा बुरे काम करे, या अपने कमरे में छुपकर कोई काम करे, या देखे या सुने, सब बहरहाल हराम है। तो आंखों को देखिए, कल क़यामत के दिन एक एक चीज़ का सवाल होगा। आपकी छोटी सी स्क्रीन जो आपके हाथ में रहती है, क़यामत के दिन ये आपका नामा अमाल बन जाएगी, और जो इससे देखते थे, सुनते थे, बोलते थे, वो होगा। साथ वाले को पता ना चले, माँ को पता ना चले, बाप को ना, शौहर को, बीवी को, बच्चों को, ये तो मुमकिन है, लेकिन अल्लाह को बहरहाल आपकी मेरी एक एक हरकत की खबर होती है। फिर I-34, हर कौम पर जवाल आएगा। आज लॉकडाउन ने इस हकीकत को काफ़ी हद तक समझ आ दिया कि जो बहुत ऊंचे उछल रहे थे, आज वो ज़रा से ज़मीन पे आने लगे। और हाफिज़तुर्राफिया तो क़यामत के नामों में से दो नाम है। उस दिन कुछ ऊपर चले जाएंगे और कुछ नीचे, पिसे हुए लोगों को उस दिन इज्जतें मिल जाएंगी और बड़े बड़े नाम उस दिन डूबने लगेंगे। और I-35 से 36, वही की पैरवी ही में भलाई है। बस सीधी सी जिंदगी का असूल बनाइए कि मेरे लिए एक लाइन ऑफ एक्शन अल्लाह ने दी है, दैट्स इट, मुझे इसके इधर उधर उधर नहीं देखना। फिर 37 से 39, दुनिया और आखिरत का बुरा अंजाम, यानी दुनिया में किसका बुरा होगा और आखिरत में किसका बुरा होगा, कौन कहाँ जाके गिरेगा, कौन किधर टूटा, कौन किधर गिरना। इन अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयात इन वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबु समाई वला यदखुलूनल जन्ना। तो अंजाम ही असल चीज़ होती है, उससे पहले के मराहिल तो अभी बीच रास्ते के हैं। तो दुआ कीजिए मरते दम तक खैर पे रहें, अगर आज नेकी कर रहे हैं, और अगर अभी तक नेकी का शौक़ नहीं, तो अल्लाह मरने से पहले तौबा की तौफीक दे देना। फिर आयत 40 से 41, अल्लाह तआला की आयात को झुटलाने वाले कभी जन्नत में दाखिल ना होंगे, यानी जैसे ऊँट का सुई के नाके से निकलना और गुजरना मुमकिन नहीं, इसी तरह ऐसे लोगों का जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। फिर आयत 42 से 43, जन्नत अमल की वजह से अता की जाएगी, ख्वाहिशों पे नहीं, तमन्नाओं पे नहीं, आरजुओं पे नहीं। वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। आज अमल कीजिए, कल अल्लाह आपको जन्नत में ले जाएगा। आयत 44 से 45, अहले जन्नत के अहले जहन्नम से गुफ्तगू। क्या वो सेटेलाइट सिस्टम होगा, क्या रिमोट कंट्रोल होगा, आज के दौर में तो कोई सवाल भी नहीं पूछता। हम जब कभी शुरू में ये पढ़ते थे तो लोग कहते थे ये कैसे होगा, तारें किधर होंगी, अच्छा टीवी स्टेशन पे तो वो उधर है, हम घर बैठे हैं, ये सब क्या है। आज की दुनिया इतनी स्मार्ट हो गई, स्मार्टफोन्स ने उनको कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट कर दिया, वहाँ ऊपर से नीचे वालों को अल्लाह ताला एक दूसरे से जोड़ दे, क्या बड़ी बात है। आप हज़ारों मील दूर बैठे इस वक्त नहीं सुन रहे, जब कभी सुबह दौरे कुरान होता है तो बाज़ आईडी से पता चल जाता है, कोई यूरोप का है, कोई मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, हर जगह। इवन आप देखिए कि नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और श्रीलंका, आपको कई जगह की आईडीज दिखती हैं। हैरत होती है कि अल्लाह उन मुल्कों में किसी को उर्दू भी समझ आती होगी, तो अल्लाह ताला दुनिया में ये करवाता है तो वहाँ क्यों ना होगा। फिर इसी तरह 46 से 49, अस्हाबे आराफ का तस्करा, जिनके नाम पे ये सूरत है, और इनके ऊपर इंसान को बहुत ही ज़्यादा रहम आता है कि बिल्कुल बीच में खड़े हैं, आते जाते इनको देख रहे हैं, और किसी एक नेकी की कमी की वजह से, या नेकियां भी बहुत है लेकिन एक हराम काम था, गलत चीज़ थी, तो इनके पोस्टपोन रिजल्ट है, यानी ये जन्नत और जहन्नम के बीच में रोक लिए जाते हैं। वनाद असहाबुल जन्नत असहाबुन नारी के बाद ऐसे लोगों का तस्करा कर दिया, वबैनहुमा हिजाब वलल आराफ रिजाल यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, वहाँ ये लोग एक दूसरे को चेहरों से पहचान रहे होंगे। फिर इसके बाद 50 से 53, अहले जहन्नुम के अहले जन्नत से गुफ्तगू। और आयत 54, हकीकी रब अल्लाह ही है, अल्लाह ताला ने जो दुनिया बना दी उसी के ऊपर क्यास करके देख लो कि फिर आखरत में क्या कुछ और नहीं दिखने वाला। और आयत 55 से 56, दुआ के आदाब है, कैसे अल्लाह ताला को पुकारो, वो दो रब्बकुम तदरुआ व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मोतदीन। फिर इसके बाद 57 से 58, बारिश में हिदायत का सामान है, बारिश मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करती है, कुरान की बारिश भी दिलों पे पड़ती है तो हिदायत के पौधे उगते हैं। फिर आयत 59 से 64, कौम नूह की दास्तान, 65 से 72, काम आद की दास्तान, और 73 से 79, कौम समूद की दास्तान, और 80 से 84, कौम लूत की दास्तान, और आयत 85 से 93, जो कि अगले पारे के अंदर जाके बात पूरी होती है, यहाँ कौम शुएब की दास्तान है। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर क्या कुछ रख दिया। और इन सब चीज़ों को इंसान जब पढ़ता पढ़ाता है, सुनता सुनाता है, तो उसको अपने रब पर प्यार आ जाता है। तो ये थी आयात। अब चलते हैं चंद बुनियादी हिदायात पर। आपके मेरे लिए थिंग्स टू रिमेम्बर, थिंग्स टू डू, पॉइंट ऑफ एक्शंस के इस पूरे पारे में अगर ये चंद आयतें भी हल्की हल्की तफसीर से समझ ली जाएँ और नोट कर लिया जाए कि बाद में हम इसको डिटेल तफसीर में समझेंगे, तो इंशाल्लाह हक अदा होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए आयत नंबर 6, हर एक को जवाब देना है। अल्लाह के यहाँ जब जाएंगे ना, तो QA सेशन तो हर एक का ही होगा। फलनसलनल्लज़ीन, तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए, हम इनसे भी सवाल करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे। जी, जब अम्बिया कराम को नहीं छोड़ा जाएगा तो उनकी उम्मतों का क्या हाल होगा? तो अपने आप को यकीन दिलाइए, कल मुझसे भी बासपुरस होगी, और दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। फिर आयत 8 to 9, आमाल का हिसाब बरहक है। वल वज़्नु यौम इज़िनिल हक, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फौलाइकहुमुल मुफ्लिहून, फमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फौलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और इस रोज़ आमाल का वज़न किया जाना बरहक है, तो जिन लोगों के आमाल के वज़न भारी होंगे वो तो निजात पाने वाले हैं, और जिन के वज़न हल्के होंगे तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में वे इंसाफ़ी करते थे। तो आज दुनिया में वो काम ढूंढ ढूंढ के कीजिए जिसका कल वज़न हो। खोखली नेकियां ना कीजिए। आप देखिए कि एक औरत के पास 5 तोले का सोन सेट है, किसी मजबूरी के वक्त सोचती है इसको बेच दूँ, चलिए 50,000 के हिसाब से मुझे 2,500,000 रुपया मिल जाएगा, 5 तोले के पैसे लेके आऊंगी। सुनार के पास जाता है, क्या उसको 5 तोले के पैसे मिलते हैं? हरगिज़ नहीं। सबसे पहले वो डोरी काटेगा, फिर नगीने निकालेगा, मोती लटके में वो निकालेगा, फिर खोट निकालेगा, फिर पुराने नए सोने का वज़न करके वो उसको 2.5 लाख, नहीं वो 1.5 लाख, 1.5 ही दे दे तो बड़ी बात है। क़यामत के दिन हमारे आमाल इसी तरह ठोक बजा के देखे जाएंगे। इखलास है कि रिया है, दिखावा है कि नहीं, लोगों को वाकई लोगों का डर था या सिर्फ अब अपनी शौक पूरे करने के लिए है। बस जब आप तबलीग भी कर रहे होते हैं, यकीन करें आपको पता है कि आपसे अच्छी बात कोई कर सकता है, आप कहते नहीं मैं करूँगी मैं दूंगी, और हम बस जब वो चीज़ छुपा लेते हैं जो हमारी अपनी मोटिवेशन का जरिया बनती है, हालांकि आपको इस हदीस पे यकीन है, मन दाल अल खैरी का फाइल ही, जिसने किसी को किसी अच्छी चीज़ की तरफ डाल दिया, रिकमेंडेशन कर दी और उसको करके उसने वो काम किया तो उसको भी उसी का दर्जा मिल जाएगा। तो बस दफ़ा हम खुद नेकियां करने में खुशी महसूस करते हैं, हालांकि ज़्यादा भारी नेकी ये होती है कि दूसरों को बेहतरीन चीज़ पेश की जाए। आप देखिए असली नकली का फ़र्क भी तो होता है ना। आप क़यामत के दिन अपने नेकियां लेके जाएंगे, उस दिन पता चलेगा कितना खोट था, कितनी रिया थी, कितना सेल्फ प्रेजिंग थी, और कितनी गलतियां थी, और कितने मिसकॉन्सेप्शंस थे। और जब हम इस तरह की अधूरी चीज़ें दूसरों को देते हैं तो लोग बेचारे कहते हैं यही सब कुछ है, तो गोया कि हमने फिर उनका मेयार भी डाउन कर दिया। फिर इसके बाद देखिए आयत 23, आजिज़ाना दुआ है। पहली दुआ जो इंसानियत को सिखाई गई वो माल की नहीं थी, दौलत की नहीं थी, हुस्न की नहीं थी, बेटे बेटियों की और घरों की नहीं थी, बल्कि वो तौबा की दुआ थी। काला रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दोनों अर्ज करने लगे, परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। तो नियत कीजिए कि गुनाहों पे माफियां मांग मांगते रहना है, चाहे दुनिया से जाने का वक्त भी आ जाए। फिर आयत 26 में लिबास की अहमियत। पहली दफ़ा ख़ास तौर पर यहाँ लिबास एज अ ड्रेस कोड आया है। याद रखिए 3 जगह कुरान पाक में ये जिक्र है, सूरत अल आराफ जैसे कि यहाँ, फिर सूरत नूर और उसके बाद सूरत अल अहज़ाब में। पहली मिसकंसेप्शन दूर कीजिए कि लिबास का ताल्लुक सिर्फ औरतों से नहीं है, मर्दों से भी है। दूसरी बात है कि घर में एक आम औरत औरतों में रहकर क्या पहन सकती है, उसका जिक्र यहाँ है। घर के मर्दों गैर महरमों के बीच में बाप भाई बेटे के साथ रहेगी तो क्या पहनेगी, वो सूरत नूर में है। और घर से निकलते वक्त दुनिया को दिखाने के वक्त बाहर एक्सपोज होगी तो क्या करेगी, इसका जिक्र सूरत अल अहज़ाब में है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबास युवारी सौआतिकुम व रीशा। दो चीज़ें हैं इसमें लिबास के मकासद में से। नंबर एक, युवारी सौआतिकुम, सतर को ढांकना। हर बंदे के जिस्म पे कुछ ऐब होते हैं जो दूसरों को नहीं दिखाना चाहता। अल्लाह ने कहा कपड़े पहन लो, जानवर कपड़े नहीं पहनते, और अगर पहनते भी हैं तो इतने टाइट है उनकी स्किन साथ है कि उनका जिस्म एक एक जगह से दिखता है। तो युआरी सऊआतिकुम की दो शरायत लिख लीजिए, शफाफ ना हो और वसाफ ना हो, यानी सी थ्रू ना हो, और आपके जिस्म के वसफ बयान करने वाला ना, यानी इलास्टिसिटी ना हो, चिपके हुए पजामे, चिपकी हुई शर्ट्स, पीछे से बैग खुलती भी नमाज के दौरान, ये कपड़े नहीं हैं। अल्लाह चाहता तो जानवरों की तरह हमें भी एक और खाल ऊपर पे ना देता, चलो भाग जाओ, और वो तो पहले ही पहनी हुई है। तो लिबास इंसान को जानवरों से ऊपर उठाता है, जब हमने इंसान को जानवरों की औलाद समझा तो फिर लिबास तो फिर उतर गए। दूसरी चीज़ है रीशा, खूबसूरती, नज़ाकत, कढ़ाई, मोती, सलमा, सितारा। इसी तरह मर्द है तो वो अपने लिबास को मर्दों के फैशन के मुताबिक कुछ करे तो कोई हर्ज नहीं। और वह लिबास हो तकवा ज़ालिका खैर, परहेजकारी का लिबास सबसे अच्छा, ये अंदर का लिबास है। एक्सपोज करने का शौक ना हो, दिखावा ना हो, नमूद ना हो, रिया ना हो, अपने लिए पहनी है, तादी से नेमत के लिए पहनी है, सदका जारिया के लिए पहनी है, किसी की खुशी के लिए पहनी है। लेकिन इसके अलावा जलाने और कुड़ाने के लिए जो लोग पहनते हैं, जरा से उनके माइंड सेट को देखिए, तो क्या ये अच्छी बात है कि कोई जले और आप खुश हो। फिर इसी तरह है 27, शैतानी हमले। या बनी आदम अला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, ए बनी आदम देखना कहीं तुम्हें शैतान बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर जन्नत से निकलवा दिया और इनसे इनके कपड़े उतरवा दिए ताकि इनके सतर इनको खोल कर दिखा दे, और वो और इसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम इनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को इन लोगों का रफीक-ए-कार बना दिया जो ईमान नहीं रखते। तो शैतान का हमला हमारे माँ बाप पर हुआ, पेट में हराम डलवाया और कपड़े उतार लिए। तो लिख लीजिए, जहां हराम होगा वहां लिबास थोड़ा होगा। लिबास का मुख्तसिर होना इस बात की दलील है कि आप हराम के करीब और अल्लाह से दूर हैं। और इसी तरह से आयत 31, जीनत और खाने पीने के आदाब। या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युखलिफुल मुसरिफीन। हदीस को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लग करके अगर इस आयत को सुने तो मुराद है कि नमाज पढ़ने से पहले ब्यूटी पार्लर जाओ और मेकअप कराओ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। हालांकि असल में यहाँ ये नहीं है, यहाँ अरबों की उस आदत पे तनकीद है, बरहना इबादत करते थे मादर जात नंगे, हरम में जाते, तवाफ करते, हज और उमरे करते और कपड़े ना पहनते। क्यों? कहते इन कपड़ों में हमने गुनाह किए हुए हैं, नेचुरल ड्रेस में रहेंगे। नाउजु बिल्ला, शैतान याद रखिए या तो मजहब के नाम पे बेहयाई लाता है या कल्चर के नाम पे। तो ऐसी चीज़ों में उनको कहा कि इसराफ ना करो, ये तुम्हें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल कपड़े ना पहनो, और खाने पीने में भी हद से ना बढ़ो। फिर इसी तरह 132 आयत है, असल नेमते किन के लिए हैं। कुल मन हरम ज़ीनतुल्लाहिल्लती अखरजली इबादिही, ऐसे लगता है कि एक जोश का अंदाज है, पूछो इनसे कौन है जो जीनत और आराइश और खाने पीने की पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं इनको हराम करे। अल्लाह को गुस्सा आता है हलाल को हराम करने में। देखिए अल्लाह ने अगर दुनिया का दस्तरखान सजाया तो किसके लिए? लोग कहते नहीं अंगूर वो तो जन्नत में ही खाएंगे, और अनार इतना महंगा फल, तोबा तोबा हम तो आखरत में खाएंगे। तो दुनिया के अनारों और अंगूरों से फिर क्या होगा? शराब बनेगी। खाइए पिए, दूसरों को भी खिलाइए, बीमारों को भी दीजिए, घर के मुलाजमीन को भी दीजिए। तो खाइए भी पिए भी अपनी हैसियत के मुताबिक, दुनिया में फ़ायदा उठाइए। वला तंस नसीब कमिनत दुनिया, तो इंशाल्लाह ये नेमतें आपके हक में हुज्जत होंगी। और आयत 43, अहले जन्नत का हम्द का तराना। अल्लाह अकबर, सारी ज़िंदगी बंदा मोमिन अपने दिल को पाक करता है गंदे जज्बात से, और ज़ुबान पे लफ्ज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जन्नत में जाने के बाद ये दो नेमतें कैसे अता करेगा? व नज़ा नमा फ़ी सुदूरहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिम अल-अन्हार, और जो कीने इनके दिलों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे। आज ही निकाल दीजिए कीना, बुग़्ज़, एनिमिटी, हसद, नेगेटिविटी, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, देखिए आपकी दुनिया कैसे जन्नत होगी। और इनके महल्लात के नीचे नहरें बह रही होंगी, और जन्नती जन्नत में जाने के बाद जो कलाम करेगा, ज़ुबान पे जो तराना है वो, वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और अगर अल्लाह हमें रास्ता न दिखाता तो हम रास्ता ना पा सकते थे। सच कहिए, आज कुरान सामने है आपके भी और मेरे भी। अगर अल्लाह इस वक्त कुरान की जगह कोई गीता, कोई बाइबल, कोई ड्रामा, कोई कृष्णा, कोई और चीज़ें, कोई फिक्शन की बात, कोई डाइजेस्ट, कोई हफ्ता कैसा गुजरे का अगर आपके सामने होता तो क्या बनता? तो इस कलाम की नेमत को अल्हम्दुलिल्लाह कहकर लिया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ कर लें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर जन्नत में जाकर भी ये बात याद रखवाएंगे। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे और इस रोज मुनादी कर दी जाएगी कि तुम इन आमाल के बदले में जो दुनिया में करते थे इस जन्नत के वारिस बना दिए गए हो। और आगे फिर नाफरमानों का अंजाम 50 से 51, एक तरफ जन्नत एक तरफ जहन्नुम। वनादा असहाबुन नार असहाबुल जन्नत या नफीदु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और दोस्त की जन्नतियों से कहेंगे किसी कदर हम पर पानी बहाओ या जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से कुछ हमें दे दो। देखिए दुनिया में अल्लाह के हराम करदा से रुक गए होते तो आज दूसरों को देने वाले होते, लेकिन यहाँ हराम से रुक ना सके वहाँ उन पर हलाल नेमतें हराम कर दी गईं। और ये थे कौन से लोग, काफिर किसको कहा गया, देख लीजिए हाईलाइट कर लें, अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवा वलाइबन, वो लोग जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बना लिया। क्या ये गैर मुस्लिमों की बात है कि मुस्लिम्स की? आज हम अपने दीन का खेल तमाशा बनाते हैं, झूम झूम के दीन को पेश करते हैं और लोगों को लोरियां देते हैं, और वग़र्रतहुमुल हयातु दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने इनको डुबो दिया, धोखों में पड़ गए। फल यौमन अनसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाजा, आज हम भी उनको ऐसे ही भूल जाएंगे जैसे वो हमारे इस दिन की मुलाकात को भूले हुए थे। वमा कानू बि आयातिना यजहदून, और वो हमारी आयतों के मुनकर हो रहे थे। अल्लाह इस बुरे अंजाम से बचाए। और फिर आयत 55 से 56, दुआ के आदाब। धमकियाँ ना दीजिए, गानों की तरह दुआएं ना पढ़िए, रोब ना डालिए, मजमे को रुलाने के लिए दुआएं मांगना ये सहाबा का अमल नहीं था, ये दिखावा है। दुआ तो क्या है, उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, चुपके से पुकारो, आज से पुकारो, किसी से मांगना हो तो दूसरों के बीच में मांगते हैं या अकेले में, बीवी शौहर से उसके दोस्त के सामने मांगेगी, बच्चा बाप से अकेले में मांगेगा या पार्टी में जाकर मांगेगा, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। बस दुआ में हद से ना गुजरिए, और हद से गुजरना क्या है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, बीच में दूसरों को डालना, और इसकी बहुत सारी डिटेल्स आप सुन सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें हिदायत देते। आज की हदीस, जिसने कुरान की तरफ दावत दी उसे सीधे रास्ते की हिदायत दे दी गई, तिर्मिजी की रिवायत है। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में रखे। क्यू ए सेशन ओपन है आपके लिए, एनी क्वेश्चन एनी थिंग आप इससे मुतल्लिक या रमज़ान और उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जैसे भी आप पूछेंगे आपको उसी तरफ से जवाब दिया जाएगा। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।